ओम शांति। ऐसे ही बारिश के दिन एक दोपहर लंदन के एक निर्जन रास्ते पर दो यात्री जा रहे थे। दोपहरी थी, निर्जन स्थान था और दो यात्री चलते चलते सामने एक तख्ता आता है, आगे का रास्ता बंद है, द रोड इज क्लोज्ड। दोनों ही यात्री उस तख्ते पर लिखी हुई सूचना को पढ़ते हैं, परंतु साथ साथ ये भी देखते हैं कि उसी तख्ते के बाजू में जो रास्ता है उस पर अभी अभी एक कार गई हुई है और उस कार के निशान उस रास्ते पर है, और दोनों सोचते हैं इन्हीं निशानों का पीछा किया जाए। उस रास्ते पर कार के वो निशान और उसका पीछा करते हुए वो दो यात्री सामने पड़ते हैं। सामने पहुंचने के बाद पता चलता है सामने जो पुल है वो टूटा हुआ है, रास्ता सामने बंद है। दोनों ही वापस लौटते हैं। एक अपने मित्र से कहता है, जो बात वहां लिखी थी हमें मान लेनी चाहिए थी। वो दोनों यात्री वापस वहीं पहुंचते हैं जहां वो तख्ता था, और अब तख्ते के दूसरी तरफ कुछ और लिखा था। लिखा था, अब हुआ ना भरोसा। क्या लिखा था? अब हुआ ना भरोसा, समझा समझा, अच्छा अब समझा क्या करना है। आज के मुरली का अंतिम महावाक्य जो बाबा हमेशा ही कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं? समझा समझा समझा। मुरली पर बहुत सारे तख्ते हैं, तख्तों पर बहुत सारी सूचनाएं लिखी है, ये करो वो नहीं करो, ये करो वो नहीं करो, ये नहीं करो और वो नहीं करो, पर फिर भी रास्ते पर निशान है, कोई तो गया है, किसी ने तो किया है, हम भी तो देखे क्या होता है, और हम भी निकल पड़े, हम भी आगे बढ़े, और जब देखा कुछ नहीं तो फिर वापस लौटे, और फिर बाबा के वही महावाक्य कौन से, समझा श्रीमत के तख्ते लगे हुए हैं। फिर भी ब्राह्मण आत्मा सोचती है, इस रास्ते पर जाकर तो देखे होता क्या है, इतने तो गए, हम भी तो देखे। भाइयों को बाबा ने कहा है, अनुभवी हो। आज क्या कहा? अनुभवी हो। अनुभवी कभी धोखा खा नहीं सकते, परंतु विडंबना यही है मनुष्य समाज की कि कितने ही अनुभव लेने के बाद भी बार बार वही वही धोखा खाते रहता है। तो बाबा जब भी कहते हैं समझा, इसका अर्थ है एक बार अव्यक्त महावाक्य चले थे, समझाया उन्हें जाता है जो बेसमझ है। अब तुम समझदार बने हो, भक्ति में जो करते थे बेहद बेसमझी से करते थे, परसों की मुरली, परंतु अब तुम बेहद समझदार बने हो। तो जब कहा गया है यहां नहीं जाना, अर्थात नहीं जाना, नहीं तो फिर तख्ती की दूसरे ओर जो लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा और फिर जार जार रोना पड़ेगा। तो आज कौन सा दिन है? फ्रेंडशिप डे, मैत्री दिवस, मित्रता दिवस। सबसे पहले तो हम सभी खुदाई खिदमतगार आत्माओं की ओर से खुदा दोस्त को आज के इस दिवस पर हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वैसे तो शास्त्रों में सुदामा और कृष्ण की मैत्री का गायन है, सुदामा ने कभी कृष्ण को हैप्पी फ्रेंडशिप डे नहीं कहा, परंतु उनकी मैत्री अब तक भी प्रसिद्ध है। राम ने कभी सुग्रीव को फ्रेंडशिप बैंड नहीं बाना, परंतु उनकी मैत्री का गायन आज तक है। हमारा मित्र कौन है? जिन जिन ने उसको अब तक अपना मित्र नहीं बनाया है। वो आज बना ले। सबने बनाया है, वही परम मित्र है, वही परम सखा है, वही परम फ्रेंड है, वही हम सफर है, वही हम नुमा, हम सफर, हम राही, सब कुछ वही है। तो ऐसी उससे मैत्री बढ़ा लो, ऐसी उससे फ्रेंडशिप बढ़ा लो कि खींचा चला आ जाए हमारे प्रेम के बंधन में, हमारे मैत्री के बंधन में। ऐसा ये बंधन बांध लो कि इस बंधन से वृत्ति चंचल नहीं होगी, सर्व संबंधों का बंधन। और आज के दिन विशेष वो हमारा मित्र है, परम मित्र, परम सखा। ऐसा ये प्रेम है, ऐसी ये प्रीत है। इस प्रीत को इतनी बढ़ा लो कि क्या हो जाए, अब हम उसके पीछे है, वो हमारे पीछे हो जाए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। कबीर कहता है मैंने अपने मन को ऐसा निर्मल कर लिया है जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। पहले तो मैं फिरा करता था उसके पीछे पीछे, अब क्या कहत कहत हरि फिरे, अब हरि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या कह रहा है? कबीर कबीर। ऐसा प्रेम बढ़ जाए, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए कि जिस प्यार में वो भी बंध जाए। तो उसको परम मित्र बना लेना है। जीवन के जो भी अनुभव है, जीवन की जो भी बातें हैं, उसी एक को बताए, उसी एक से शेयर करे। माताओं को बाबा ने कहा है आज, एक बाप दूसरा न कोई। क्या करो? इसकी चेकिंग करो और इसकी सदैव स्मृति रखो। उस याद की छत्र छाया के अंदर तुम्हारे प्रवृत्ति के जितने कार्य है सभी सहज हो जाएंगे। याद की छत्र छाया। यदि बाप याद नहीं है, अर्थात क्या आज की मुरली से, यदि बाप याद नहीं आता मतलब मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस जगत की सभी व्याधियों का कारण क्या है? मोह है। बाबा ने माताओं की बहुत महिमा गाई है आज। क्या महिमा गाई? बाप को माताएं अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्या किया? क्योंकि बहुत सहन किया, और इस सहन करने के रिटर्न में बाप ने क्या आकर कर दिया? स्नेह दिया और सहयोग दिया, स्नेह दिया और सहयोग दिया। तो माताओं ने बहुत सहन किया है। बाबा ने माताओं को आज एक वरदान दिया है। कौन सा? अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागवती भव। हिंदी में शब्द है सुहागिन या सुहागन। बाबा ने नया शब्द निर्माण किया है, सुहागवती। सुहाग किसकी निशानी है? भाग्य की निशानी है। सदा सुहागवती भव। माताओं ने सहन बहुत किया है। भारत का इतिहास माताओं के, स्त्रियों के शोषण का इतिहास है। शास्त्रों में, पुराणों में, सभी जगह पर सीता की अग्नि परीक्षा हुई, परंतु किसी ने ये नहीं कहा क्या कि राम भी अग्नि परीक्षा दे? कहा, और उसी राम की सबसे ज्यादा महिमा और पूजा भी माता ही करती है। धर्मराज ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, उसके बाद भी यदि आज भी उसे कोई धर्मराज न कहे तो उसे अधार्मिक कहा जाता है। सावित्री गई अपने पति को लाने धर्मराज के पास, यमराज के पास। कोई धर्म, कोई सत्यवान आज तक नहीं गया। कि गया? गया कोई अपनी पत्नी को लाने? उसे तो चिंता है अब और कहां से कोई मिल जाए। कौन सा पति है जो सती हुआ? इतिहास में कोई रिकॉर्ड? स्त्रियों ने बहुत सहन किया है, बहुत सहा है। अपने पति को पत्र में क्या लिखती है स्त्रियां? मेरे पति परमेश्वर। क्या लिखती है? मेरे पति परमेश्वर। और नीचे क्या लिखती है? तुम्हारे चरणों की दासी। बहुत ठोकरे खाई है। बाप आए हैं क्या करने? तुम्हें ठाकुर। दुनिया ने जिसे ठुकरा दिया, बाप ने उन्हें ठाकुर बना दिया। ऐसी माताएं, बाबा पूछ रहे, यदि ट्रस्टी समझते हो तो मोह नहीं, यदि गृहस्थी समझते हो तो मोह है। सब कुछ छोड़कर तो आ गए, परंतु मोह में यदि फंस गए तो उन्नति नहीं होगी। दिखाया है इतिहास में, महात्मा बुद्ध के पास एक युवक आया जो कि संन्यस्त होना चाहता था। क्यों संन्यस्त होना चाहता था? क्योंकि परेशान था अपने मां बाप से। मां बाप का बड़ा रस था उसमें। जब देखो तब शादी की बात करते थे। उसे संन्यास में रस नहीं था, परंतु कोई मार्ग भी नहीं था। परेशान हो चुका था, उब चुका था अपने मां बाप से। इतना मोह था उसके मां बाप का उसमें कि उसने एक मार्ग ढूंढा। आधी रात को निकलकर चला गया और बाजू में ही महात्मा बुद्ध का जो आश्रम था वहां पर जाकर उनसे कहा कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूं, और वो भिक्षु बन जाता है। कुछ दिनों के बाद जब देखते हैं कि मेरा पुत्र नहीं आया तो पिता निकलता है उसे ढूंढने के लिए। बहुत जगह ढूंढते हैं पर नहीं मिलता है। उसे एक बात याद आती है कि बेटा कभी कभी कहता था कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। हो सकता है वो भिक्षु बन गया और वो पहुंचता है उसी बुद्ध के आश्रम में और पाते हैं कि यहां ही वो बेटा है, और बहुत चीखता है और पुकारता है और रोता है और याचना करता है, विनती करता है अपने बेटे को कि तुम चलो वापस घर। और जितना ही विरोध उतना ही वैराग्य और बढ़ता है। तो बेटा कहता है कुछ भी हो जाए मैं तो यहां से हिलूंगा नहीं। जब दिखता है कि कोई मार्ग नहीं तो पिता सोचते हैं कि मैं भी संन्यास ले लूं, और वो भी वहीं पर संन्यास ले लेते हैं। कई दिन जब पिता भी नहीं आते और उस व्यक्ति की पत्नी भी नहीं आती है तो वो जो गृहिणी है वो निकल पड़ती है अपने पति को और अपने बेटे को ढूंढने के लिए। और उसे वही बात याद आती है कि अब उसका बेटा कहता था कि मैं भिक्षु हो जाऊंगा, और वो सोचती है कि शायद ये वही होगा, और जाती है और देखती है कि उसका पति भी वही है और बेटा भी वही है। वो रोती है और पुकारती है, चिल्लाती है, वो दोनों भी नहीं मानते, तो वो भी फिर क्या हो जाती है, भिक्षुनी बन जाती है। और अब ये तीनों ही साथ साथ रहने लगते हैं। फिर तो क्या, साथ साथ ही भिक्षा लेने सुबह निकलते हैं, साथ साथ ही आते हैं और साथ साथ ही रहते हैं। अभी बेटा जो था उसे तो कोई संन्यास में रस नहीं था। बाप ने संन्यास इसलिए लिया था क्योंकि मोह था, और मां ने भी संन्यास इसीलिए लिया था क्योंकि पति ने लिया था और बेटे ने लिया था। तो तीनों ही साथ साथ उठना, साथ साथ सोना, साथ साथ गपशप करना। बुद्ध का जो सुबह सुबह प्रवचन होता था उसमें भी वो नहीं जाया करते फिर तो। और चारों ओर ये बात फैल गई, और जब बुद्ध को पता चला कि ये ऐसा है तो उन्होंने तीनों को बुलाया और कहा, ये कैसा संन्यास है तुम्हारा? संन्यास अर्थात दूसरे में जो रस है वो समाप्त हो जाना, स्वयं स्वयं में रस उत्पन्न हो जाना। संसार तो छोड़कर आ गए या छोड़ दिया, परंतु यहां आने के बाद, इस जीवन में प्रवेश करने के बाद, फिर वही सारे मोह के बंधन निर्माण कर देना, ये इस जीवन की गरिमा नहीं है, इस ब्राह्मण जीवन से गिर जाना है। तो बाबा कह रहे माताओं को, नष्टो मोहा बन जाओ, याद की छत्र छाया में रहो, उस वायुमंडल में रहते हुए वहां का प्रभाव न पड़े। ये बाप दादा की आश है, माताओं की। तो आज की मुरली में कौन किससे मिल रहा है? विश्व सेवाधारी बाप। बाप का प्रथम कर्तव्य है, बाप का प्रथम टाइटल कौन सा है, देखो, वर्ल्ड सर्वेंट का है। अभी दो हफ्ते पहले जो मुरली चली थी उसमें आया था, वो बाप का टाइटल है। सबसे पहला टाइटल वर्ल्ड सर्वेंट, कृपालु दयालु। तो विश्व सेवाधारी बाप किसको देख रहा है? सेवाधारी बच्चों को देख रहा है। कौन से बच्चों को देख रहा है? खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहा है। खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत करने वाले बच्चों को देख रहा है। ये शब्द पहले पहले साकार मुरलियों में आया है। दो शब्द आते हैं, एक सर्वोदया लीडर और दूसरा खुदाई खिदमतगार। सर्वोदया लीडर है विनोबा भावे का, और खुदाई खिदमतगार है खान अब्दुल गफर खान। 1929 में इस व्यक्ति ने इस संस्था की स्थापना की और आसपास जो भी घटित होता है वो मुरली में आ जाता है। बाबा कहते हैं तुम हो खुदाई खिदमतगार। लाल कुर्ती वो पहनते थे, पख्तून लोग उनको बादशाह खान कहा करते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त अभियान जो कि महात्मा गांधी के फॉलोअर्स थे, उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सरहद गांधी, उनके द्वारा जो स्थापन किया है, जो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध, उसे कहा गया था खुदाई खिदमतगार। और वही शब्द बाबा प्रयोग करते हैं, तुम सब हो कौन? खुदाई खिदमतगार। असंभव कुछ भी नहीं, असफलता हो नहीं सकती। किसकी खिदमत करते हो? खुदा की। असफलता होती कब है? उसके कई सारे कारण आज बाबा ने गिनाए हैं। असफलता तब होती है जब किसको भूल जाते हो? खुदा को भूल जाते हो, खुदा को जुदा कर देते हो। सर्विस, गॉडली सर्विस की बजाय क्या रह जाता है? केवल सर्विस। ईश्वरीय सेवाधारी की बजाय क्या बन जाते हो? केवल सेवाधारी। खुदा जुदा हो जाता है और केवल खिदमत रह जाती है, तब असफल होते हो, तब मुश्किल लगता है, तब मेहनत लगती है। खुदाई खिदमतगार बच्चे और मेहनत, स्व सेवा और विश्व सेवा में मेहनत, बाप दादा क्या सहन नहीं कर सकते? बाप दादा ये बाबा कह रहे हैं तुम्हारे तो केवल किससे? भगवान के नाम से भक्ति में गायन है। क्या क्या हो जाता है भगवान के नाम से? बहुत सारी चीजें हो जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं, और जो नहीं होने वाला काम है वो हो जाता है। जहां सहयोग नहीं मिलना होता है वहां सहयोग मिल जाता है। जो होपलेस बात है वहां होप पैदा हो जाती है। जो असंभव कार्य है वो संभव हो जाता है। जब केवल भगवान के नाम से ये जब हो जाता है, इसका मतलब वो जब आया था उसने असंभव कार्य को संभव किया था। जब उसके नाम से ये जब हो जाता है तो तुम तो कौन हो? उसके साथी हो, श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो, तुम अधिकारी हो। रामायण में दिखाया है वो पुल कैसे बना, केवल नाम लिख दिया पत्थरों पर तो पुल बन गया। केवल नाम की ही कितनी महिमा है भक्ति में। उसके नाम से ही बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। वो तो आया ही नहीं है, उसके नाम से ही हो जाते हैं कार्य। राम नाम की लूट है, क्या करो, लूट सके तो लूट, इतना गायन है। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो वो आत्माएं तो केवल नाम लेती है और बड़े बड़े कार्य संभव हो जाते हैं। तुम्हारे तो साथ स्वयं भगवान है, तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है। युग भाइयों से मुलाकात में बाबा ने कहा है तुम्हारा पार्ट कितना ऊंचा है, ऊंचते ऊंचे बाप के साथ तुम्हारा पार्ट है, ऊंचेते ऊंचे तुम हो, स्नेही तुम हो, सहयोगी तुम हो, श्रेष्ठते श्रेष्ठ तुम हो। उदाहरण दिया किसका? प्राइम मिनिस्टर और उसके प्राइवेट सेक्रेटरी का। उसको कितना नशा रहता है, तो तुम्हें भी वह नशा रहना चाहिए। हमारा साथी कौन है? हमारा पार्ट किसके साथ है? कौन हमारे साथ है? केवल ये नशा भी अगर रहे तो क्या कहा बाबा ने, विग निर्विघन बन जाओगे। वायुमंडल का, संघ का, वातावरण का विघन समाप्त हो जाएगा केवल और केवल नशे से। ऐसा नशा हमें है कि हमारा पार्ट किसके साथ है, हमारे साथ कौन है, ऐसा नशा चाहिए। ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। कौन सी बेहोशी? ये ईश्वरीय नशा। ऐसा अगर नशा हो तो सारे ही विघ्न समाप्त हो जाएंगे वायुमंडल के, वातावरण के और संग के। फिर वो कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी कि संग अच्छा नहीं है, वायुमंडल अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है। संग किसका है? केवल वह याद रहे, हमारे साथ इस समय भगवान है, हमारा पाठ इस समय भगवान के साथ है। इस बात को अपनी अंत चेतना में प्रवेश करने दो, अपने अंतर जगत में इस यह बात समा जाए, इतनी समा जाए, इतनी समा जाए कि बाबा ने आज की मुरली में कहा है तो क्या हो जाएगा? खुदाई जादू आ जाएगी सेवा में। क्या हो जाएगा? खुदाई जादू। इतनी ये बात अंदर ही अंदर समा जाए, खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत करने वाले, खुदा के साथ जिनका पार्ट है, जिनकी भूमिका स्वयं भगवान के साथ है, ऐसा नशा हमारे जीवन में आ जाए। तो क्या हो जाएगा? सारे ही विघ्न समाप्त हो जाएंगे, स्व के और सेवा प्रति दो बताए बाबा ने, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? अगर ऐसा नशा रहा तो और क्या क्या हो सकता है? असंभव सेवाएं संभव हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? जितने भी बाधाएं हैं, जितनी मुश्किलें हैं, वो सारी सहज हो जाएगी। जिस कार्य में अभी मेहनत लगती है वो कार्य अति सुलभ हो जाएंगे। तो इस नशे को बढ़ाना है, पर फिर अभी मुरली बाबा चला रहे हैं, इसमें विघ्न क्या क्या है? एक विघ्न तो बता दिया, अलग कर देते हो। दूसरा विघ्न, मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार। ये सारी जो बातें हम कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, ये कहां के संस्कार है? रावण के संस्कार, रावण का स्वभाव, मध्यकाल के संस्कार, अल्पकाल के संस्कार। पराई चीज ये हमारी नहीं है। हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से है? अनादि संस्कार। कौन से संस्कार है? वो ब्लिस के संस्कार है, आनंद के संस्कार है। याद और सेवा का बैलेंस तो क्या होगा? ब्लिस। और ब्लिस होंगे तो क्या बन जाएंगे? ब्लिसफुल, कृपालु और दयालु। तो अब बाबा ने चार ओरिजिनल संस्कारों की हमें स्मृति दिलाई है। कौन से चार ओरिजिनल संस्कार है? सबसे पहला मैं, ओरिजिनल संस्कार शांत स्वरूप आज की मुरली में है, मैं संपन्न आत्मा हूं। दाता कौन बन सकते हैं? जो संपन्न है, जो भरे हुए हैं, ज्ञान से लबालब, योग से परिपूर्ण, ईश्वरीय स्नेह से परिपूर्ण, ऐसी जो आत्माएं हैं वही संपन्न आत्माएं हैं। तो समान कौन सा दिया है? मैं संपन्न आत्मा हूं। ये क्या है? हमारा ओरिजिनल स्वभाव, ओरिजिनल संस्कार है। दूसरा, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। तुम्हारी सफलता की रोशनी से विश्व रोशन होगा। तुम सब कौन हो? सफलता के सितारे हो। और इसके साथ और एक समान जोड़ा है, और एक समान इसी के साथ जोड़ा है, क्योंकि हमने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है। ये कोई नई बात नहीं है। तो सफलता से संबंधित सारे ही समान, सफलता का मैं सितारा हूं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस बात में सफलता? सेवाओं में सफलता, स्व प्रति सफलता, अपने जो ओरिजिनल संस्कार है उनसे। जो अल्पकाल के संस्कार है, रावण के संस्कार है, मध्यकाल के संस्कार है, उनको परिवर्तन करो। एक बहुत ही सुंदर महावाक्य है आज की मुरली में, अनादिकाल के संस्कार से क्या करो, अल्पकाल के संस्कार को परिवर्तन करो। वो अनादि के काल के सारे संस्कार इमर्ज करने हैं। परंतु इसमें और एक बाधा है। बाबा ने कहा विघ्न के दो बीज, विघ्न आते हैं उसके दो रास्ते, विघ्न जो आते हैं उसके दो दरवाजे, विघ्न जो आते हैं उसके दो शब्द, कौन से? अभिमान और अपमान। दोनों ही जन्म कहां से लेते हैं? मैं से लेते हैं। मैं, ये जो मैं है यहां से जन्म लेता है। जो व्यक्ति जितना ही अहंकारी उसे उतनी ही जल्दी अपमान की फीलिंग आएगी, उसे उतनी ही जल्दी लगेगा कि मेरा अपमान हुआ है, मुझे ऐसा क्यों कहा गया। उदाहरण दिया बाबा ने, क्या उदाहरण दिया? मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मैं सबसे पीछे क्यों? कामना है आगे जाने की, परंतु कहां? यश में, नाम में। ये जो कामना है ये गिराने वाली कामना है। मैंने नहीं किया, खुदा ने मेरे द्वारा कराया। जो भी सेवाएं यहां हो रही है सब कैसे हो रही है? ईश्वरीय शक्ति के द्वारा। हम कुछ भी कर नहीं रहे। जैसे ही मनुष्य को अहंकार आता है कि मैंने किया, वहीं से अध्यात्म में पतन शुरू हो जाता है। बाइबल में लिखा है जो यहां सबसे आगे है मेरे राज्य में, मेरे प्रभु के राज्य में, वो सबसे पीछे होगा नाम की प्राप्ति में। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, यह अहंकार तृप्त होना चाहता है, पर कभी भी मैं तृप्त नहीं होता। दिखाया है एक व्यक्ति के लिए, एक बहुत ही बड़ा मूर्तिकार था, इतना बड़ा मूर्तिकार था कि उस जैसी मूर्ति और कोई बना नहीं सकता था। एक बार कोई ज्योतिषी उसे कहता है कि इस तारीख पर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उसे बड़ी चिंता होती है और सोचता है कैसे भी करके मुझे अपनी मृत्यु को रोकना है। इतना कुशल वो मूर्तिकार होता है कि अपने ही जैसी एक मूर्ति तैयार करता है, और एक नहीं ऐसी 11 मूर्तियां तैयार करता है, और उसमें वो खुद खड़े हो जाता है, ताकि मौत का जो फरिश्ता आएगा उसे भी समझ में नहीं आएगा कि किसको लेके जाना है। ऐसी वो मूर्तियां खड़ी करता है, और वैसे ही होता है जब वो मौत का फरिश्ता आता है, वो कंफ्यूज होता है किसको ले जाऊं, सभी मूर्तियां एक समान और उसमें वो भी एक जगह खड़ा है। वो वापिस जाता है भगवान के पास और अपनी दुविधा को सुनाता है क्या किया जाए। तो भगवान उसके कान में कुछ कहते हैं कि ये करो जाकर, और वो फरिश्ता मौत का वापस आता है और एक मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहता है सब ये सारी मूर्तियां अच्छी है, पर इनमें एक दोष है और बहुत बड़ा दोष है। बाकी मूर्तियां एकदम अप्रतिम है, इन जैसी मूर्तियां कोई बना नहीं सकता, परंतु एक दोष है। अचानक वो एक व्यक्ति वहां से जहां खड़ा होता है उठ के कहता है कौन सा दोष, हो ही नहीं सकता, मैंने बनाई है। तो वो फरिश्ता उससे कहते हैं बस यही दोष है। कौन सा दोष है? मैंने बनाई है, मैंने जो बनाई है उसमें दोष, उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है, यही दोष है। अब चलो, मैंने ये किया इसमें दोष कैसे हो सकता है, मैंने ये किया, ये मेरा चिंतन है, ये मेरा प्लान है, ये मेरी आइडिया, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। ये अपमान कहां से आया, बाबा ने प्रश्न पूछा है आज, ये अभिमान कहां से आया? जब बाप करण करावन हारे तो यह अभिमान कहां से आया, यह अपमान कहां से आया? जिस व्यक्ति का जितना बड़ा अभिमान उसको अपमान भी उतना ही होगा। जिसका अभिमान शिखर पर है उसको जरा कोई कुछ कह दे और उसे दुख होगा, फीलिंग आएगी, बुरा लगेगा। इसके लिए ये बात समझ लो जो बाबा ने आज कही है, मैंने नहीं किया। क्या कहा बाबा ने? खुदा ने मेरे द्वारा कराया। जितना सर्विस में निमित्त भाव होगा, निर्माण भाव होगा और निर्मल वाणी होगी, उतना ही जमा होगा। कितनों की सेवा की जा रही है, कितने सेंटर खोले जा रहे हैं, कितनों का कोर्स किया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। भाव क्या है? मैं कर रहा हूं यदि भाव है तो सब माइनस। बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, चाहे कोई कितनी भी भाग दौड़ करे, कितनी भी सेवा करे, यदि सेवा करते समय निर्माण भाव, निर्मल वाणी और निमित्त भाव नहीं है तो केवल 5% ही जमा होगा। मार्किंग सिस्टम को समझ लो इस विश्वविद्यालय की। इस विश्वविद्यालय की जो मार्किंग सिस्टम है वो थोड़ी अजीब है, उन विश्वविद्यालयों जैसी नहीं है। यहां का अज्ञान में एक का एक गुना और यहां एक का 100 गुना, वो चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही। इसके लिए अब ये नहीं सोचो कि तख्ती पर तो लिखा है परंतु कार के निशान है तो थोड़ा जाकर देख लेते हैं क्या होता है, फिर वापस आना पड़ेगा, परंतु वो इतना आसान नहीं है। ये वापस आना फिर एक का यहां कितना हो जाएगा? 100। इसके लिए अपने हृदय में इस अहंकार के वृक्ष को कभी उगने नहीं देना। यहां जो कुछ हो रहा है, जो भी सेवाएं हो रही है, वो हम नहीं कर रहे हैं। किसके द्वारा हो रही है? ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हो रही है। वो है, उसकी छत्र छाया है, इसके लिए सेवा हो रही है। अगर उसकी छत्र छाया हट जाए, दया कृपा और आशीर्वाद हट जाए हमारे सिर पर से, हम गिर जाएंगे। हम ये पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे जो अब कर रहे हैं। जो ज्ञान और योग में हमें रुचि है और रस है और जो हमारा पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा। वो है, इसके लिए पुरुषार्थ भी हम कर रहे हैं। वो है, इसके लिए इस ज्ञान मार्ग में हम चल पा रहे हैं। और सेवाएं यहां जो भी हो रही है, वो चाहे तो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता है, किसी को भी टच कर सकता है। हम हैं कौन? इसके लिए इस अहंकार को कभी आने नहीं देना। भारत में बोधि धर्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा शिष्य। जब बुद्ध धर्म भारत में जैसे कि लुप्त हो रहा था, भारत से बौद्ध भिक्षुक बाहर गए। जब ये बोधि धर्म, उसका नाम था, जब चीन में गया तो चीन का सम्राट उसके स्वागत के लिए खड़ा था, सारी सेनाएं उसकी स्वागत के लिए खड़ी थी। परंतु ये जो बौद्ध धर्म था, बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था, ऐसा निरंकारी व्यक्ति था कि जब वो सम्राट उसके चरणों में झुका तो देखा पैरों में एक ही चप्पल है, और ऊपर जब आग की तो देखा एक चप्पल ये एक हाथ से अपने सिर पर लिए खड़ा है। तो सम्राट ने पूछा कि ऐसा क्यों, आपने एक चप्पल एक अपने हाथ पर क्यों लिए खड़े हो? तो बौद्ध धर्म कहता है, एक तरफ तो आपने मेरा सम्मान किया है, अभी मैं संतुलन मेंटेन करना चाहता हूं। कौन सा संतुलन? अपने ही या तो अपनी निंदा करना चाहता हूं, अपमान करना चाहता हूं, ताकि मुझ में वो अहंकार नहीं आए। जो आपने किया उसी को मैं कैसे निरस्त करना चाहता हूं? अपने ही सिर पर एक अपनी ही चप्पल रखकर। इस अध्यात्म के मार्ग में जो सबसे सूक्ष्म शत्रु है वो है मैं, और सबसे बड़ा अहंकार और सबसे सूक्ष्म अहंकार और सबसे प्रगाढ़ अहंकार इस संसार में जो है वो है ज्ञान का अहंकार, इस ज्ञान में चलने का ही अहंकार। हमारे पास आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, यह अहंकार। तुम अज्ञानी हो, तुम आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, हम जानते हैं, यह अहंकार। तुम्हें कुछ पता नहीं, चुपचाप सुनो हम जो सुनाते हैं, प्रश्न नहीं पूछना। हम जो सुनाते हैं सुनो। दूसरों को हम ज्ञान में लाना चाहते हैं, वो भी हमारे ही अहंकार की तृप्ति है, वो दूसरी बात है, उससे क्या होगा। हम चाहते हैं सभी ईश्वर के बने, परंतु उसके पीछे एक सूक्ष्म अहंकार भी रहता है जो कार्य करता है कि मैंने लाया, मैंने बाबा से मिलाया, मैं इस आत्मा को मधुबन ले आई, मैं नहीं होता तो ये ज्ञान में नहीं आता। संसार का सबसे सूक्ष्मतम अहंकार कौन सा है? ज्ञान का ही अहंकार। मैं ज्ञानी हूं, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरा भाषण अच्छा है, मैं बोलता अच्छा हूं, मैं लिखता अच्छा हूं, मैं सेवा अच्छी करता हूं, मेरी पहचान बहुत है मधुबन में, कोई काम हो तो बता देना, टोली वगैरह चाहिए हो तो बोल देना। सूक्ष्म अहंकार कार्य करता है, और जहां अहंकार है वहां सारे विघ्न उत्पन्न होंगे। अपने आप की चेकिंग करनी है, किसी भी तरह का अहंकार इतना सूक्ष्म है वो पकड़ में भी नहीं आता है, उतनी ही सूक्ष्म हमारी चेकिंग चाहिए। किस बात का अहंकार, किस बात की अकड़। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में दिखाया है, एक दिन नमाज को अपने साथ एक छोटा बच्चा भी ले जाता है, और जब नमाज पूरी करके वापस आते तो छोटा बच्चा, कुछ लोग जो बाकी लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे और सो रहे हैं, वो बच्चा कहता है देखो कैसे काफिर लोग हैं, देखो कैसी पापात्मा है, नमाज भी नहीं पढ़ते। मोहम्मद उससे कहते कल से तुम मेरे साथ मत आना नमाज के लिए, अब तक तुम भी सो रहे थे, अब तक तुम भी वही कर रहे थे जो वो लोग कर रहे थे, और एक ही दिन में इतनी अकड़। अब तक तुम भी वही थे जो दुनिया के लोग हैं, अभी अभी आए क्या, अभी अभी पूरा ज्ञान को समझा भी नहीं, और इतना अहंकार चित्त में भरा है। क्या हमने इस ज्ञान को समझा है? पहला प्रश्न तो ये है, अगर समझा होता तो बाबा क्यों कहता है बार बार समझा समझा समझा? शायद उसका अभिप्राय है हमने नहीं समझा है, पर वो डायरेक्ट नहीं कहना चाहता, परंतु वास्तव में शायद हमने नहीं समझा। हम खुद अपने बारे में बहुत बार ये सोचते हैं, जब भी किसी भी मुरली पर बोलना है हम ये सोचते हैं कि हमने इस मुरली को अभी समझा ही नहीं है, और हम चले हैं ये समझाने के लिए। हमेशा ही आत्मग्लानी और अपराध भाव होता है हर बार, परंतु फिर सोचते हैं कि शायद ये समझाना ही समझना या समझने की एक विधि है, शायद समझ जाएंगे एक दिन। समझा है नहीं, समझ तो जाएंगे आशा है, असंभव संभव तो होगा, खुदाई खिदमतगार है, साथ ही स्वयं भगवान है। तो इस बात का भी अहंकार ना आए, समान में स्थित रहना और बात है, समान आंतरिक नशा है, अहंकार देहभान का नशा है। समान से कब अहंकार में उतर जाओ ये पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं ये समान ही है, परंतु वो अहंकार बन चुका होता है। इसके लिए निरंतर उस प्रभु के गुणगान गाते रहना, निरंतर उसकी याद रखना। जगदीश भाई कहते थे साष्टांग दंडवत, भक्ति का शब्द है परंतु शिव बाबा के लिए और कोई शब्द नहीं है। अगर वो ना होता तो हम कहां होते, यदि वो जीवन में ना आता तो हम कहां होते। यदि उसने इतने ऊंचे ऊंचे समान ना दिए होते तो हम कहां गर्त में पड़े हुए होते। कितने ऊंचे समान दिए है उसने। बाबा ने कहा तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए, कैसे कैसे बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे समान उसने हमें दिए हैं, उसके उपकारों को कभी ना भूलना। उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसको कभी ना भूलना। उसके लिए प्यार कम ना हो, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए। जैसे सुबह भी कह रहे थे, दादी जानकी कहती है बाबा इतना मीठा है, इतना मीठा है कि जी करता है उसको खा लूं पूरा। ऐसा उसके साथ रूहरियान करते रहना, ऐसे उसके साथ बातें करते रहना, उस एक आशिक के साथ, माशूक के साथ। वही हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है। बी ऑल एंड एंड ऑल, द अल्फा एंड द ओमेगा ऑफ द वर्ल्ड, द बिगिनिंग मिडल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो है तो हम है, वो नहीं तो हम भी नहीं। हमारा अस्तित्व ही उस पर है, हमारा जीवन ही उससे है, उस तक है। वो नहीं तो हम नहीं। इसके लिए इस मार्ग में अहंकार नहीं आने देना। डबल चाबी, यहां डबल चाबी चाहिए, हमारी भी और उसकी भी। और यहां पर उल्टी चाबी नहीं घुमानी है। एक मुरली चली थी उसके ऊपर, जहां ये सोच लेते कि मैं ही सब कुछ हूं, ये अहंकार जीवन में नहीं आने देना। बाइबल में लिखा है जो विनम्र है प्रभु का राज्य उनका है, जो जितने नम्र है प्रभु का राज्य उनका है। तो ऐसी ह्यूमिलिटी, ऐसी निरंकारिता अपने जीवन में धारण करनी है। जो प्रशंसा हो रही है वो भी उसी की है, जो महिमा हो रही है वो भी उसी की है। हम कुछ है ही नहीं। उसके बाद पार्टियों से मुलाकात की बाबा ने, स्वयं को समान में स्थित करना है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं संपन्न आत्मा हूं, मैं ब्लिसफुल आत्मा हूं, वरदानी आत्मा हूं, महादानी आत्मा हूं। और एक एक शब्द का आधे 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 मिनट के लिए अनुभव करें।
प्रेम से बस दो घड़ी।
भाइयों से बाबा ने कहा, न्यारा बनना है। जितना न्यारा होंगे उतना ही क्या होंगे, बाप के प्यारे। इसका मापदंड ही यह है, उसी अनुपात में बाप के प्यारे होंगे। जितने ही न्यारे होंगे, बाप जैसी प्यारी वस्तु सारे ही कल्प में और कोई नहीं है। यदि इससे भी और कोई वस्तु प्यारी लगती है, कोई वस्तु या व्यक्ति, तो वहां बाप का प्यार कम हो जाएगा। इसके लिए इंग्लिश में कहावत है, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जो अपने जीवन में ईश्वर को द्वितीय स्थान पर रखता है, वो उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखता। तो भगवान के लिए हमेशा कौन सा स्थान होना चाहिए? प्रथम। उससे अधिक प्यारी वस्तु इस संसार में कोई भी नहीं है। तो ये एक पॉइंट कही, और अनुभव के बारे में कहा कि अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकता। अपने ही जीवन को देखो एक नजर इस मधुबन भूमि में बैठकर, कि जीवन में कहां कहां किस किस से धोखा हुआ है, और किन किन विकारों के वशीभूत हम थे तब ये धोखा हुआ है। कौन कौन था वो संस्कार था, वो मध्यकाल का, वो रावण का, वो पराया, जो हमारी ओरिजिनल स्टेज नहीं है, वो कौन कौन से संस्कार थे जिनकी वजह से जीवन में धोखा हुआ। स्व चेकिंग करनी है, आत्मनिरीक्षण करना है, स्वयं को देखना है, क्यों हुआ वो देखा धोखा, क्या हम करें कि फिर से वो धोखा न हो। जब तक ये चेकिंग नहीं करते, वो धोखा अलग अलग रूप से होते रहेगा। इसके लिए अनुभवी अर्थात अपने अनुभव से विश्व का कल्याण करने वाले, अनुभवी अर्थात धोखा न खाने वाले। अनुभव कर लिया है, बाबा भाइयों से बात कर रहे, अधर कुमारों से बात कर रहे, जिन्होंने जीवन के सारे अनुभव कर लिए, सब देख लिया, क्या सुख है विकारों में, क्या मिला हाथ में, क्या आया, जितनी अपेक्षाएं थी, जितनी आशाएं थी, कुछ भी नहीं मिला। बस दौड़ रहे थे जीवन में और दौड़ रहे थे, हाथ में कुछ भी नहीं आया। कैसी वो दौड़ थी और कैसे भगवान ने अपना बना लिया। अब समय है रुकने का, रुकना स्वयं को चेक करना, रुकना स्वयं से बात करना, रुकना स्वयं से ही प्रश्न पूछना, मैं किस ओर दौड़ रहा हूं और क्यों दौड़ रहा हूं। अनुभवी, अपने अनुभव को रिवाइज करो। एक अनुभव की बात कही, न्यारेपन की बात कही, नशे की बात कही, उसके बाद में साथी बाबा है उसकी बात कही, माताओं की बातें हमने बोल दी, उसके बाद में बाबा ने और साकार और अव्यक्त उसकी बात की। जिन्होंने साकार पालना नहीं ली, उनके लिए क्या कहा बाबा ने? बहुत अच्छा एक शब्द प्रयोग किया आज की मुरली में, कौन बताएगा? क्या करते हैं वो? अव्यक्त में साकार के स्नेह को खींच रहे हैं, अव्यक्त से साकार के स्नेह को खींच रहे, और अव्यक्त और जो साकार वाले हैं, वो उनको तो डबल लॉटरी है, विशेष पाठ है, विशेष भाग्य है। साकार तो साकार ही है, परंतु यहां भी कोई कोई है जिनको अनुभव हो रहा है, जो साकार वालों को भी नहीं हो रहा है। दोनों एक दो से आगे है। ये बाबा का एक अद्भुत महावाक्य है जो कई बार आता है, अगर कोई इसे समझ ले तो समझ ले, दोनों एक दो से आगे है। अर्थात कौन आगे है? हमेशा मुरलियों में यह शब्द आता है, दोनों एक दो से आगे है। सभी को बाबा खुश करते हैं। फिर बाबा ने कुछ ग्रुप से मुलाकात की, सेवाओं की थोड़ी बातें की बाबा ने। गुजरात से क्या कहा? गुजरात के गुजरात में जो आवाज हो उसको क्या कहा? छोटा माइक। लाना कौन सा है? बड़ा माइक, जो कि चारों ओर आवाज करे। यूपी से भी बाबा ने मुलाकात की, उसमें क्या कहा? पतित पावनी के लिए मशहूर है। छू मंत्र करो बाबा ने कहा है। क्या करना है, कौन सा छू मंत्र करना है? पतित से पावन बनाने का छू मंत्र करना है। हे पतित पावनी छू मंत्र करो। तो और भी सेवाओं की बात की, आवाज भारत से ही निकलेगा, सारी आत्माएं यहां आएगी एक दिन और क्या कहेगी? हमारा भारत। और क्या कहेगी? मेरा बाबा। तो कुछ सेवाओं की बात है, तो सारी ही मुरली को हम देखें, उसमें कुछ समान हमको हाथ में आएंगे। जैसे कि चार समान तो बोल दिए, उसमें और एक चीज है, मैं ब्लिसफुल आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा ओरिजिनल संस्कार है। इस संस्कार में स्थित रहना, जितना इस संस्कार में स्थित रहेंगे तो क्या होंगे? स्थिति बैलेंस होगा तो ब्लिस, और ब्लिस होगा तो कृपालु। ये नहीं कहना पड़ेगा किस पर कृपा करूं। कुछ दिन पहले मुरली थी कृपालु और दयालु पर। किस पर कृपा करनी है? जो अप्राप्त है, जो कमजोर है, जो किसी ना किसी बात के वशीभूत है। हे धर्मात्माओं, स्वयं पर, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं पर और विश्व की आत्माओं पर कृपा करो। कृपालु हमारा गायन है, दयालु हमारा गायन है, बाप के साथ। तो सारी ही मुरली सेवा के सफलता के ऊपर है। सेवा के सफलता के कुछ और भी आयाम है, जैसे दृढ़ता सफलता की चाबी है, निस्वार्थ भावना, निमित्त भाव, निर्माण चित, निर्मल बोल, ये सारे भी कुछ सेवाओं के सफलता के आयाम है। परंतु आज जो बाबा ने कहा है वो है खुदा को जुदा न करना। ये याद रखना कि हमने सफलता हर कल्प पाई है, ये बदली नहीं हो सकता। हमारा पाठ सदा बाप के साथ है। खुदा को अलग न करना, मैंने ये किया, इसका कोई वर्णन न हो। मम्मा का बार बार उदाहरण हम सुनाते हैं। मम्मा बेंगलोर में सेवा करके आई, 3 मास तक बड़ी बड़ी सेवाएं की। किसी ने पूछा कैसी रही सेवा, मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप। क्या कहा? अच्छी थी, बस, उसका कोई वर्णन नहीं। और आज हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया है, सेवा क्या करने गए और 10 फोटो क्या ले लिए, तो फोटो कहां से कहां विश्व के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। सेवा करनी तो ऐसी करो जैसे हमें पता ही नहीं, हमसे जैसे कोई करा रहा है, वो भाव ही नहीं, उसका कोई वर्णन ही नहीं। ऐसा निरंकारी चित्त बन जाए, उस भाव से सेवा हो, वो करा रहा है, हमने नहीं की, ऐसा सेवा का भाव हो। और भी कोई पॉइंट रही है मुरली से तो बताइए। हो गई? तो मुरली को यहां से जाने के बाद हो सके तो फिर से एक बार पढ़ना, मन ही मन रिवाइज करना, और रोज की जो मुरली है उसी को इसी तरह से मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना, उसका स्वरूप बनने का प्रयत्न करना, उसकी गहराई में जाना, ये सारे कार्य हमें रोज करने हैं। तो याद प्यार में क्या कहा बाबा ने? ऐसे अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप आत्माओं को, क्या कहा? अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप। कितना अच्छा वाक्य है, अनादि संस्कार, हमारे जो अनादि संस्कार है उसमें स्थित रहने वाले स्मृति स्वरूप, इसके स्मृति स्वरूप आत्माओं को, स्वयं को सदा निमित्त समझकर बाप को क्या समझना? करण करावन हार अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे अपने अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल स्वरूप, ऐसे सर्व प्रकार के विघ्नों के बीच को समाप्त करने वाली समर्थ आत्माओं को, ऐसे सदा के बाप के साथी आत्माओं को, ऐसे विश्व सेवाधारी आत्माओं को, बेहद के सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, ईश्वरीय सेवाधारी आत्माओं के लिए शब्द है, ईश्वरीय सेवाधारी आत्माओं को क्या बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर जाएंगे, फिर थोड़े बहन जी इंस्ट्रक्शंस देंगे, बैठेंगे।